ये आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष मिश्र से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने आसियान देशों के साथ संबंधों को नई ऊर्जा, गति और दिशा दी है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की है। लाओ की राजधानी वियेंचिन में भारत आसियान सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और आसियान देश शांतिप्रिय राष्ट्र हैं और एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई भागों में मतभेद और तनाव है, ऐसे में भारत और आसियान में मित्रता, सहयोग, संवाद और साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत और आसियान देशों के महत्व पर श्री मोदी ने कहा कि आसियान क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार पिछले 10 सालों में दोगुना होकर $13 करोड़ से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत की 7 आसियान देशों के साथ सीधी उड़ान कनेक्टिविटी है और जल्द ही ब्रुनेई के लिए भी सीधी उड़ान सेवा शुरू होगी। प्रधानमंत्री ने भारत और आसियान देशों के बीच संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए 10 सूत्री योजना की घोषणा की। इसके अंतर्गत अगला वर्ष आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसकी संयुक्त गतिविधियों के लिए भारत $50 लाख उपलब्ध कराएगा। आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास कोष के अंतर्गत आसियान भारत महिला वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियों की संख्या और भारत के कृषि विश्वविद्यालयों में आसियान छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति का प्रावधान दोगुना किया जाएगा। भारत और आसियान देशों ने सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुरूप विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए शांति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और संरक्षा बरकरार रखने के और इन्हें बढ़ावा देने की दोबारा पुष्टि की है। आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी सुदृढ़ करने के एक संयुक्त वक्तव्य में भारत और आसियान देशों के नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में देशों के आचरण संबंधी घोषणा के पूर्ण और प्रभावी अमल पर प्रभावी और ठोस आचार संहिता जल्द बनाए जाने की आशा व्यक्त की। केंद्र ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत हिजब उत तहरीर और इसके सभी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। एक अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि हिजब उत तहरीर कथित तौर पर युवाओं को आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों में शामिल करने के लिए कट्टरपंथी बनाने और प्रेरित करने तथा आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने में शामिल है। जाने माने उद्योगपति और समाजसेवी रतन टाटा का अंतिम संस्कार वर्ली स्थित शमशान घाट पर कर दिया गया। इससे पहले रतन टाटा का पार्थिव शरीर शाम 4:30 बजे तक राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र में रखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने श्री रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्र सरकार की ओर से उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। महाराष्ट्र सरकार ने उनके सम्मान में राजकीय शोक की घोषणा की है। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सहकर्मी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के खिलाफ आमरण अनशन में शामिल 7 जूनियर डॉक्टरों में से एक की हालत बिगड़ने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों ने मीडिया को बताया कि डॉक्टर अनिकेत महतो की तबीयत काफी बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उन्हें गहन चिकित्सा इकाई में भेजा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 200 किलोग्राम कोकीन जब्त की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पश्चिमी दिल्ली के रमेश नगर इलाके से कोकीन जब्त की गई है। इस सिलसिले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि नशीले पदार्थ की जब्ती उसी सिंडिकेट का हिस्सा है, जिससे पिछले सप्ताह 500 किलोग्राम से अधिक कोकीन जब्त की गई थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह नई रेल सेवा साहिबगंज को हावड़ा से जोड़ेगी, जो 125 रुपए के किफायती किराए पर केवल 7 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ट्रेन प्रतिदिन चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि इस महीने की 12 तारीख के करीब दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में एक और ताजा चक्रवाती परिसंचरण विकसित होने की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।